पृष्ठ संख्या 136 अध्याय 11 का शेष। पार्क के पीछे की ओर एक कोने में जहाँ सीमेंट के बेंच लगे थे, अभी से बूढ़ी स्त्रियों की टोली आ बैठी थी। इनमें श्यामा बीवी की सास जरूर आई होगी, और बसंती आगे बढ़कर स्त्रियों की टोली में उसे पहचानने लगी। बसंती श्यामा बीवी के सामने इनकी भी ठिठोली किया करती थी, इनके भी किस्से सुनाया करती थी। बीवी जी, ये औरतें पार्क में सारी शाम बैठी रहती हैं, उस वक्त घर जाती हैं जब आसमान में तारे निकल आते हैं, अपनी बहुओं से डरती हैं, उस वक्त घर जाती हैं जब घर के लोग खाना खा चुकते हैं। आज सुषमा बीवी की सास कह रही थी, मैं तो अपने लिए दूध की एक बोतल अलग से खरीद लेती हूँ, भला हो बूथ वालों का, मेरे पास टोकन नहीं है, फिर भी एक बोतल दे देते हैं। घर में यह तो नहीं सुनना पड़ता कि दूध कौन पी गया, दूध कौन पी गया, पर इन स्त्रियों की बातें सुनकर बसंती का मन उदास हो जाता था। उनकी नकल तो उतारती थी, पर मन में उसे तरस आता रहता था। सुमित्रा की सास भी यहाँ रोज आती थी और रोज ही यह सवाल पूछती थी, बहन जी, भगवान के चरणों में मन कैसे लगे? मैं रोज आरती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, पर मन नहीं लगता। यहाँ बैठकर बूढ़ी स्त्रियाँ भजन गाती, आरती करती, फिर कोई बुढ़िया कथा करने लगती, पर कभी-कभी भगवत भजन करते हुए भी किसी का मन उचट जाता और वह शिकायतें करने लगती। कोई सुनाते सुनाते फूट पड़ती और पल्ले के छोर से झरते आंसू पोंछने लगती। धीरज रखो बहन जी, इन बातों से क्या रखा है? भगवान का नाम लो, मोह माया से मन हटाओ, भगवान के चरण में चित्त लगाओ। इस पर वह बुढ़िया आंसू पोंछ कर कहती, जान तो पृष्ठ संख्या 137 तभी निकलेगी बहन जी जब वक्त आएगा, अपने कहे से तो नहीं निकलेगी। बाकी 2 जून रोटी का ही सवाल रह जाता है, पर जब कभी शाम पड़ने से पहले पार्क में से कोई बच्चा भागता हुआ इधर आ जाता और अपनी दादी माँ या नानी माँ का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगता, तो मानो उस बुढ़िया के लिए स्वर्ग उतर आता। झुर्रियों में ममता भरी मुस्कानें कांपने लगती और आतुर बाहें बच्चे को खींच कर छाती से लगा लेती। मेरा पोता है सुभाष, क्या नाम है तेरा, माँ जी को बताओ। बसंती वहां से हट गई। वह चाहती थी कि श्यामा बीवी की सास वहाँ बैठी हो तो उससे श्यामा बीवी के बारे में पूछे, उनके घर की खबर ले, पर जब उसे वहाँ नहीं देखा तो लौट आई और बुलाकी की ओर जाने लगी, जो पार्क के अंदर गेट के पास एक बेंच पर बैठा बसंती के बच्चे को घुटनों पर बैठाए बसंती की राह देख रहा था। घर लौटते समय बुलाकी ने सुझाव दिया कि पार्क से निकलकर सीधा सामने वाली सड़क पर चलते हैं और वहां से बस में बैठ जाएंगे, पर बसंती ने कहा कि नहीं, ढाबे की तरफ से होकर बड़े चौराहे की ओर जाएंगे और वहां से बस स्टॉप की ओर घूम जाएंगे। वास्तव में बसंती के मन में श्यामा बीबी को देख पाने की धुकधुकी लगी थी। उसके घर में वह जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन दूर से उसे देख पाने का लोभ भी वह संवरण नहीं कर पा रही थी। ढाबे के पास पहुंचकर वह दाएं हाथ को घूम गए, सामने ही श्यामा बीवी का घर पड़ता था। बसंती की आंखें श्यामा बीवी के घर के छज्जे पर लग गईं। वह आस लगाए हुए थी कि श्यामा बीवी छज्जे पर आएंगी। श्यामा बीवी इस वक्त सोकर उठती हैं और जरूर दो एक बार छज्जे पर आती हैं, पर छज्जे पर कोई नहीं था, केवल सुखाने के लिए डाले हुए धुलाई के कुछ एक कपड़े हवा में हौले हौले फरफरा रहे थे। लंगड़ा बुलाकी आगे आगे जा रहा था और बसंती सिर टेढ़ा किए अभी भी ऊपर की ओर देखे जा रही थी। पैरों में छन छन करते पाजेब, ऊपर शोक लाल रंग की साड़ी जो बसंती के शरीर पर से फिसल फिसल रही थी और उसके संभाले नहीं संभल रही थी। बच्चे को भी पीले रंग का साटिन का कुर्ता पहना रखा था और सिर पर इस गर्मी में भी फूदने वाली टोपी। पृष्ठ संख्या 138। श्यामा बीवी छज्जे पर नहीं आई। बसंती ने सिर सीधा किया और चौक की ओर घूमने को हुई, जब सहसा ठिठक कर खड़ी हो गई। सामने दीनू चला आ रहा था, उसके अंग अंग को बिजली छू गई और वह जहाँ खड़ी थी खड़ी की खड़ी रह गई। दीनू ने भी उसे पहचान लिया, सामने सचमुच बसंती आ रही थी। बसंती को पहचानने में उसे तनिक देर लगी, इतने चमचमाते कपड़ों में उसे पहचानना कठिन था। बसंती को पहचानते ही उसकी नज़र उस आदमी पर गई जो बसंती के आगे आगे चल रहा था। टेढ़ा चलता हुआ, सिर पर पगड़, लाठी पटपटाता, होली के स्वांग की तरह चला जा रहा था। और पीछे पीछे बसंती सीता माई की तरह चुपचाप आ रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बसंती ठिठक खड़ी थी। उसे फौरन से वैसे ही भास होने लगा था जैसा दीनू के समीप आने पर पहले हुआ करता था, जैसे वह डूब रही है, जैसे अपने पर उसका कोई काबू ही नहीं रह गया है। ऊपर को उठती कोई लहर उसके सिर तक पहुंच रही है और वह उसमें डूबती जा रही है। दीनू पर आंखें पड़ते ही उसका अंग अंग शिथिल पड़ने लगा था। तू कब आया? बसंती ने उसके पास जाकर कहा। बसंती की आंखें उसके चेहरे पर से हट ही नहीं पा रही थी। यह तेरा बेटा है, उसने पप्पू को आगे बढ़ाते हुए कहा, और कहते ही उसकी चोली दूध से भीग गई। इसकी शक्ल तेरे पर गई है ना, देख तो इसकी आंखें। तू कब आया? पप्पू बसंती की बाहों में बैठा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर देख रहा था। बच्चे को देखकर दीनू को भी अनूठा सा अनुभव हुआ। उसके अंदर व्याकुलता सी कसमसाई, फिर अपार सुख की लहर उसे सराबोर कर गई। यह सचमुच उसका बेटा था। गांव में अपने ब्याह के 10 बरसों में भी उसके बेटा नहीं हो पाया था। जन्म से पहले ही बच्चे मर जाते रहे थे, और यहाँ उसी का जीता जागता बच्चा बसंती की बाहों में टुकुर टुकुर उसकी ओर ताक रहा था। यह बालक उसी का था, सचमुच उसी का। वह अचरज से बच्चे की ओर देखे जा रहा था, और बसंती को लगा जैसे दीनू के साथ सट कर खड़ा होने का ही अतीत पृष्ठ संख्या 139 वर्तमान और भविष्य के सभी अभावों की पूर्ति हो गई है। तूने कहा था तू जल्दी लौट आएगा, तू आया क्यों नहीं? मुझे खबर भी नहीं की, बसंती ने कांपती सी आवाज में कहा। दीनू ने बसंती की ओर देखा, फिर बच्चे की ओर। इस एक ही नज़र में बच्चे ने प्रमुखता ग्रहण कर ली। मैं जो इधर आई तो मुझे मालूम था आज कुछ होगा, बसंती ने आतुरता से कहा। दीनू ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर लंगड़े दर्जी की ओर, जो अब तक आगे बढ़ चुका था, देखकर बोला, वह तेरा घर वाला है? बसंती क्षण भर के लिए ठिठकी, फिर सहसा बोल उठी, तू मेरा घर वाला है, तू तो उसके साथ जा रही है, क्या तेरी शादी हो गई है? तो क्या उसके साथ रहती जो है तो क्या? बसंती की छाती में फिर से उछाह सा घुमड़ने लगा था। वह बड़ी आतुरता से दीनू के चेहरे की ओर देखती जा रही थी। उसके अंदर फिर पहले सा अल्हड़पन जागने लगा था। भाव विह्वल उसने बच्चे को ऊंचा उठाया और दीनू की ओर बढ़ती हुई बोली, उठा अपने बेटे को। दीनू ने हाथ बढ़ाकर बच्चे को बाहों में ले लिया। गुदगुदा प्यारा सा मांस का पुतला जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखे जा रहा था। दीनू के शरीर में फिर से अजीब सी झुरझुरी हुई। क्या यह सचमुच उसी का बेटा है, उसका अपना? दीनू की छाती से लगते ही बच्चे ने एक लंबी सांस ली और आश्वस्त हो गया। तू कहाँ रहता है? बसंती ने पूछा। रामू की कोठरी में। कहाँ है वह? इधर पीछे ताल के पास। चल, बसंती ने कहा, और दीनू को कोहनी से पकड़कर उस ओर घुमाने पृष्ठ संख्या 140 लगी। बुला की लाठी पटपटाता दूर नीम के पेड़ के पास जा पहुंचा था। उसने घूमकर देखा तो बसंती की धूमिल सी आकृति सड़क के बीचों बीच किसी आदमी के साथ खड़ी नजर आई। फिर उसे लगा जैसे बसंती उस आदमी के साथ दूसरी दिशा में जाने लगी है। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उस ओर देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या बात है। उन्हें दूर होते देखकर दर्जी ने ऊंची आवाज में पुकारा, बसंती, बसंती रानी, मैं इधर खड़ा हूँ। पर दोनों आकृतियाँ, जिनमें बच्चे की आकृति खो सी गई थी, आंखों में दूर होती जा रही थी। सहसा बुलाकी राम घबरा गया। ओ बसंती, बसंती! और लाठी पटपटाता तेजी से लंगड़ मारता हुआ उसकी ओर लौट कर आने लगा। बूढ़े को अंतः प्रेरणावश जैसे पता चल गया था कि कोई अनहोनी होने जा रही है। ओ बसंती, बुलाकी ने चिल्लाकर कहा, ओ बसंती रुक जा, कहाँ जा रही है? मैं यहाँ पर हूँ। लंगड़ा उचक उचक कर सड़क पर भागने लगा। बसंती और दीनू दूर होते जा रहे थे। दोनों ढाबे के पास पहुंच चुके थे और अब दाएं हाथ का मोड़ काट रहे थे। ओ बसंती, बुलाकी का गुस्सा भड़क उठा और उसने रुककर अपनी लाठी दूर बसंती की ओर फेंकी। लौटा हरामजादी लौटा, आप भी कह रहा हूँ। लाठी गिरने पर ढाबे पर से दो तीन आदमी बाहर निकल आए। पेड़ के नीचे बैठा मोची उठकर खड़ा हो गया। उस वक्त तक बुलाकी रोने चिल्लाने लगा, मैं मुकदमा करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं बसंती, ओ हरामजादी लौटा लौटा। और बुलाकी चीखता चिल्लाता कमर पर हाथ रखे लंगड़ मारता उनके पीछे पीछे चला जा रहा था। उसे मालूम नहीं हुआ कि आगे बढ़ती हुई आकृतियां कब उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई थीं। पृष्ठ संख्या 141। ओ बचाओ, कोई बचाओ, ओ मेरी घरवाली को दिन दहाड़े लिए जा रहा है, ओ बचाओ। ओ मैंने नकद 1500 दिए हैं। कुछ लोग हंस दिए, एक आध आदमी उसके साथ हो लिया, पर ज्यादा दूर तक नहीं गया और हंसता हुआ लौट आया। बुलाकी बराबर चिल्लाता हुआ गली गली सड़क सड़क जाने लगा। बसंती को लग रहा था जैसे हर चीज फिर ठिकाने पर आ गई है। दिनू उसके पास है तो जैसे उसे सब कुछ मिल गया है, उसकी सारी भटकन समाप्त हो गई है। उसे पहली बार दिनू के साथ साथ चलते हुए एक समूचे परिवार का सा भास हुआ, जिसमें पति है, पत्नी है और बच्चा है। रामू के डेरे तक पहुंचने से पहले रास्ते में इकहरे घरों की पात के सामने एक ऊबड़ खाबड़ सा बाग था। वहां झाड़ झक्काड़ ज्यादा थे, फूल पौधे कम। वहीं पर पानी का ताल भी था। इसका पानी साल भर सूखता नहीं था, इसलिए आसपास के लोग इसे झील का नाम देने लगे थे। वहीं पर दो पेड़ों की ओट में वह सुस्ताने के लिए घास पर बैठ गए। बसंती के मन में दसियों सवाल घूमर रहे थे, बीसियों शिकायतें उठ रही थी, लेकिन दिनों के साथ सट कर बैठते ही उसे लगा जैसे कुछ भी नहीं पूछना है, जैसे सभी सवाल अनावश्यक हो गए हैं, असंगत और अर्थहीन हो गए हैं, जैसे सभी सवालों का जवाब मिल गया है। पता है, बसंती बोली, मैं रमेश नगर में आई तो धक से मुझे लगा जैसे कुछ होने वाला है। मुझे लगा जैसे मेरे पांव अपने आप उठ रहे हैं, अपने आप खींचे चले जा रहे हैं। भला हम लोग ढाबे की ओर घूमे ही क्यों? हम तो दूसरी तरफ से जा रहे थे ना। होता है ना ऐसे। दीनू की गोद में बैठा पप्पू फिर से सो गया था। दीनू बार बार उसका सिर सहला रहा था। अपनी गोद में बच्चे को बैठाए दीनू ने उसके सिर को चूमा और बोला, कहाँ हुआ था तुझे? क्या जहाँ भी हुआ था, तू तो फेंक गया था हम दोनों को, बसंती ने उलाहने के स्वर में कहा। पृष्ठ संख्या 142। कौन था तेरे पास? कोई नहीं था। फिर धीरे से दीनू के कंधे पर अपना गाल रखती हुई बोली, तू था। थोड़ी देर तक दीनू के साथ सट कर बैठे रहने के बाद बसंती चाहक कर बोली, श्यामा बीवी कहती थी तू नहीं आएगा, कभी नहीं लौटेगा, पर मैं कहती थी दीनू जरूर आएगा। बीबी जी देख लेना, वह आएगा, मैं तुम्हें ज्यादा जानती हूँ, है ना? बसंती को अभी भी लग रहा था कि कोई अलौकिक शक्ति उसे खींचकर ढाबे की ओर ले गई थी, क्योंकि दीनू वहां डोल रहा था, वहां खिंची हुई उस ओर चली गई थी। तेरा घर वाला इधर तो नहीं पहुंच जाएगा, दीनू ने कहा। तू है मेरा घर वाला, बसंती ने जवाब दिया। फिर ऐंठ कर बोली, यह क्या, इसका बाप भी हमें नहीं ढूंढ सकता, इन गलियों को वह कहाँ जानता है, इन्हें तो मैं जानती हूँ। बसंती ठीक कहती थी, इस मोहल्ले की कोई दीवार न थी जिसे इसने ना फांदा हो, कोई पेड़ नहीं था जिस पर वह ना चढ़ी हो, और बाद में इन्हीं गलियों में वह छिपती भी फिरी थी, कभी बरडू से तो कभी अपने पिता से, कभी किसी दीवार के पीछे तो कभी किसी घर की ड्योढ़ी में। यह आँख मिचौनी तो वह इन गलियों में बरसों से खेल रही है। शक्ल तुम पर गई है, बसंती ने गर्व से कहा। आंखें बिल्कुल तेरी जैसी हैं, नीचे ठुड्डी भी है ना? बाल तेरे बालों जैसे हैं, घुंघराले घुंघराले, दीनू ने कहा। दीनू के मुंह से दो शब्द प्रशंसा के सुनकर बसंती पुलक उठी। अब कहाँ घुंघराले रह गए हैं, थे तो थे, इन्हें धोते तेल लगाते रहते तो ठीक रहते। जब मैं सुजान सिंह पार्क में काम करती थी तो उस मेम साहिब के बाल भी बड़े घुंघराले थे। मैंने एक बार बाल धोकर उसका तेल लगा लिया। मैंने सोचा वह भी यही तेल लगाती होगी, पर वह तेल था ही नहीं, कुछ और ही लिसलिसी सी चीज थी। मेम साहिब ने कुछ नहीं कहा। पृष्ठ संख्या 143। उसने नौकरी से निकाल लिया। कहती क्या? कहती थी बालों पर तेल लगाना हो तो कोई दूसरा घर देख। और बसंती कहकर हंसने लगी। लोधी कॉलोनी, सुजान सिंह पार्क, उधर काम बहुत मिल जाता है। कोई कोई साहिब तो रहने के लिए क्वार्टर भी दे देते हैं, पर पैसे अच्छे नहीं देते, खाने को भी कुछ नहीं देते, दोस्त लैस और चाय का कप बस। यहाँ इससे अच्छा है यहाँ हर वक्त चाय चलती रहती है। सुबह काम पर जाओ तो बीवी कहती है, बसंती चाय पिएगी? जा अपने लिए किचन में कप बना ले। 10 बजे जब बाबू लोग काम पर चले जाते हैं और बीवी जूड़ा बांधती हुई सीढ़ियों में उसे छोड़कर आती है, तो आते ही कहती है, ला पहले एक कप चाय हो जाए। जा अपने लिए भी बना ले, मेरे लिए भी, फिर तू काम करना, मैं नहा धो लूँगी। बसंती फिर से चहकने बतियाने लगी थी। दिनू बसंती के चेहरे की ओर देखे जा रहा था। बसंती को उसका देखना अच्छा लग रहा था। एक लहर सी उसके अंदर बार बार उठ रही थी। दिनू लौट आया है, बूढ़े दर्जी के चंगुल से मैं निकल आई हूँ, नहीं तो इस वक्त वह घर पर लार टपकाता, मेरी टांगों में चिपट रहा होता। इस वक्त मेरे सामने घर वाला बैठा है और उसकी गोद में हम दोनों का बेटा बैठा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इतने दिन बाद मिल रहा है। और बसंती का मन चाहा हाथ बढ़ाकर दीनू के बालों को सहला दे। सहसा बसंती पूछ बैठी, तूने बर्डू से 300 रुपए लिए थे? दीनू की आंखें फैल गईं। किस बात के 300 रुपए लिए थे? कुछ बेचा था क्या? दीनू अभी भी बसंती की ओर देखे जा रहा था। साइकिल बेची थी क्या? हाँ, तो दीनू ने सिर हिलाकर कहा। साइकिल बेची थी या बीवी बेची थी? मुझे पैसों की जरूरत थी, घर जो जाना था। बर्डू कहता था तूने उससे 300 रुपए लेकर मुझे बेचा था, तुम्हें क्यों बेचूंगा? अपनी साइकिल जो उसे दे दी थी। वह कहता था साइकिल के अलग 100 दिए थे, पृष्ठ संख्या 144। हरामी झूठ बोलता है, दीनू ने आवेश में कहा। फिर बोला, वह साइकिल का 100 ही देना चाहता था, पर मैंने उससे 300 लिए थे। मुझे पैसों की जरूरत जो थी, मुझसे कुछ भी कहे बिना क्यों चला गया था? गांव वाले दो तीन आदमी और भी जा रहे थे, मैं उनके साथ निकल गया। बसंती दीनू के चेहरे की ओर देख रही थी। दीनू की बिल्लौरी आंखों पर फिर उसकी नज़र ठहर गई। कुछ पता नहीं चलता कि दीनू झूठ बोल रहा है या सच, लेकिन बसंती के अंदर उछाल सा उठा। कोई फर्क नहीं पड़ता झूठ बोले या सच, झूठ भी बोले तो भी मुझे मंजूर है, सच बोले तो भी मंजूर है। उससे पूछूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पूछूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दीनू की नज़र में भी बदलाव आ गया था। बसंती भी अब पहले वाली बसंती नहीं थी, एक निसंग लड़की जिसे वह अपनी कोठरी में ले गया था। बसंती अब उसके बेटे की माँ थी। बसंती ने उसकी गोद में बेटा डाल दिया था। तेरी घरवाली कैसी है? दीनू ठिठक गया। उसे इस सवाल का इंतजार तो था, लेकिन वह नहीं जानता था कि बसंती फौरन ही पूछ बैठेगी। उसके बच्चा हुआ? दीनू ने सिर हिला दिया और एक छाया से उसके चेहरे पर दौड़ गई। पर फिर उसने अपने आग्रह से पप्पू को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, उसके गर्भ नहीं ठहरता, बार बार गिर जाता है। उसे यहाँ ले आ, मैंने पहले भी कहा था ना उसे यहाँ ले आ। शकुंतला बीवी के भी गर्भ नहीं ठहरता था। इस 7 नंबर वाली बीवी पर मेरठ में एक औरत ने उसे दवाई दी, काली सी दवाई थी, जैसे पिसा हुआ कोयला होता है ना, वैसी ही थी, और वह ठीक हो गई। सच, उसे यहाँ ले आ। शादी के 16 बरस बाद शकुंतला बीवी के बेटा हुआ था, और उसके बाद 2 बच्चे और भी हुए। उसे यहाँ ले आ, बसंती बड़े उत्साह से बोलती जा रही थी। मैंने पहले भी कहा था ना, वह घर में रहे, मैं और तुम बाहर काम कर लिया करेंगे, है ना? पृष्ठ संख्या 145। जिसे उत्तेजना में वह शकुंतला बीवी के इलाज का किस्सा सुनाती रही थी, उसी उत्तेजना में बसंती बोली, तूने मुझे अपनी खबर क्यों नहीं दी? 3 महीने के लिए गया था और साल भर बाद लौटा है। मैं सारा वक्त तेरी राह देखती रही। मालूम है जिस दिन मुझे लंगड़ा दर्जी के घर भेज रहे थे, उस दिन भी मेरी आंखें सड़क पर लगी थीं। मैं सोचती थी अभी आएगा अभी आएगा, ऐसा भी कोई करता है? मैं क्या करती, कहीं से छिपाने को जगह ही नहीं मिलती थी। उधर पप्पू पेट में था, साये उतरने लगे थे जब वे घर जाने के लिए उठे। बसंती फिर से आश्वस्त और संतुष्ट महसूस करने लगी थी। उसे लगने लगा था जैसे भविष्य में फिर से अपनी बाहें उसके सामने फैला दी हैं और उसका स्वागत कर रहा है। अब फिर से मंसूबे बनाए जा सकते हैं, भावी जीवन की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। रामू की कोठी के पास जब ये लोग पहुंचे तो शाम उतर आई थी। बसंती ने बच्चे को उठा रखा था और दीनू आगे आगे चल रहा था। जब ये दीनू की कोठरी के बाहर खड़े थे तो दीनू ने आगे बढ़कर दरवाजे को खटखटाया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला तो एक गोरी चिट्टी पहाड़न सामने खड़ी थी। बसंती उसे देखती रह गई। यही रुक्मी है, मेरे साथ आई है।